नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाई। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नैनीताल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, अपने लक्ष्यों को संकीर्ण और आत्म केंद्रित न बनाएं, बल्कि उन्हें समाज, मानवता और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग और जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में 20वीं राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक एंड फिगर स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आज राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि सरकार याचिकाओं पर तय समय पर जवाब दाखिल करेगी।
मुख्य जो इसमें बिंदु यह था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे। आरक्षण को लेकर जो है प्राय फैसला कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा जब काउंटर एडजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा।
पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर 23 जून को पंचायत चुनावों पर रोक लगाई थी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नैनीताल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्यों को संकीर्ण और आत्म केंद्रित न बनाएं, बल्कि उन्हें समाज, मानवता और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रखें। अभिभावकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मातृत्व और पितृत्व न केवल बच्चों के प्रति बल्कि पूरी मानवता के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों पर दबाव न डालें। भारत की हालिया यात्रा और विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है। हम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। भारत के लिए पिछला दशक विकास का दशक रहा है, प्रगति का दशक रहा है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक नया स्थान बनाने का दशक रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की डिजिटल पहुंच और कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में अनूठी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग जैसे शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि ये तकनीकें अब स्कूल, कार्यस्थल और घर तक पहुंच गई हैं। इसके लिए युवाओं को समय के साथ बदलना होगा ताकि आप भारत के योग्य नागरिक बन सकें। प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि में अतिक्रमण न हो इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया है। आज देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने और अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को देखने के लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए। उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी किनारे और नैनीताल जिले में कोसी आदि नदियों के किनारों पर भी अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग और जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में सिंचाई और राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण से न केवल हल्द्वानी और देहरादून शहर को पर्याप्त पेयजल मिलेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री धामी ने अधिकारियों को दोनों बांधों के निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि जमरानी बांध परियोजना को 2028 और सौंग बांध परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के हिमाद्री आइस रिंक में 20वीं राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक एंड फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार आइस स्केटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है। श्रीमती आर्या ने कहा कि यह आइस रिंक देश भर के खिलाड़ियों के अभ्यास व ट्रेनिंग के लिए खुला है और सरकार चाहती है कि इस खेल अवस्थापना का फायदा उठाकर भारत के खिलाड़ी दुनिया भर में आइस गेम्स में देश का नाम रोशन करें।
अपने प्रदेश के लिए, पूरे खिलाड़ियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर हिमाद्री यानी कि आइस स्केटिंग रिंग पूरी तरीके से आइस स्केटर्स जो हमारे बच्चे हैं उनको समर्पित हो चुकी है और लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होती रही हैं। और आज बेहद खुशी है कि मुझे उस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ पर आज नेशनल चैंपियनशिप जो है वो हो रही है आइस स्केटिंग के। निश्चित रूप से बच्चे, पूरे देश भर के बच्चे हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं और आज उन्होंने जिस प्रकार से डेमो दिया है तो वो अपने आप में अद्भुत था। पूरा एक तरीके से कह सकते हैं साहसिक खेल है। मैं सभी आए बच्चों का बहुत स्वागत है और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हिमाद्री में जहाँ आज नेशनल चैंपियनशिप हो रही तो आने वाले समय में एशियन चैंपियनशिप भी देखेंगे।
आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के 19 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 30 जून को होगा। हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा में तेज आवाज वाले डीजे और बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हरिद्वार में मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बैठक की गई है।
कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए।
मौसम विभाग ने प्रदेश में 1 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने आज बागेश्वर में कहीं कहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति कल भी देखने को मिलेगी। 29 जून को राज्य के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने मौसम खराब होने की स्थिति में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकने का आग्रह भी किया है। रुद्रप्रयाग जिले में कल रात भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग शटल पुल और मुनकटिया के निकट अवरुद्ध मार्ग को पैदल आवागमन के लिए अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। पुलिस ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेकर और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यात्रा पर आएं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 2020 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों की घोषणा की है। अगले महीने से प्रभावी होने वाले नए नियमों के अनुसार बारिश, खराब रोशनी या अन्य कारणों से 8 ओवर तक के किए गए मैच में अब पावर प्ले 2 ओवर और 2 गेंद का होगा और 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी मौजूद रह सकेंगे। इसी तरह 5 ओवर की पारी के लिए 1.5 ओवर पावर प्ले के होंगे, 10 ओवर की पारी में 3 ओवर और 15 ओवर की पारी के लिए 4.5 ओवर पावर प्ले के निर्धारित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाई। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जल्द जारी करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नैनीताल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, अपने लक्ष्यों को संकीर्ण और आत्म केंद्रित न बनाएं, बल्कि उन्हें समाज, मानवता और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग और जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में 20वीं राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रैक एंड फिगर स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।